नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। पश्चिम एशिया का संघर्ष अब और व्यापक हो गया है। अमरीकी सैन्य पनडुब्बी ने श्रीलंका के दक्षिण में गोल तट के पास ईरानी युद्धपोत आयरिस दैना पर हमला किया जब जहाज ईरान लौट रहा था। हमले के बाद युद्धपोत डूब गया। इस हमले में अब तक 78 लोगों के घायल होने की खबर है और 80 शव बरामद किए जाने की पुष्टि हुई है। आयरिस दैना हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। इसी बीच इसराइल ने तेहरान में ईरानी शासन से संबंधित बासेज और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर सिलसिलेवार हमले किए। इसराइली रक्षा बल IDF के अनुसार ये ठिकाने ईरानी शासन के नियंत्रण तंत्र का हिस्सा थे। इसराइली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू करने की जानकारी भी दी। उधर अमरीका केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि 100 घंटे के भी कम समय में लगभग 2000 लक्ष्यों पर 2000 से अधिक हथियारों से हमले किए गए। उनके अनुसार ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को गंभीर क्षति पहुंची है और कई बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर और ड्रोन नष्ट किए गए हैं। अमरीकी रक्षा विभाग के अनुसार कुवैत के शुआइबा बंदरगाह पर ड्रोन हमले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमरीकी आर्मी रिजर्व के 4 जवान मारे गए। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से अब तक ईरान में 1097 नागरिकों की मौत की सूचना है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा संसाधन तैनात किए हैं जहां जारी संघर्ष के दौरान हमला हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाए जाने के प्रमाण नहीं मिले हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टोल फ्री नंबर 1800118797 और 011-2301-7905 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा प्रभावित देशों में भारतीय दूतावासों ने 2400 घंटे आपातकालीन हेल्पलाइन भी शुरू की है। कतर ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया कि उसने वहां केवल अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया था। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि हमलों में रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हैक्सेद ने दावा किया कि कुछ ही दिनों में अमेरिका और इसराइल ईरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तेहरान के पश्चिम में स्थित कराज और इस्फहान शहरों में भी पिछले कुछ घंटों में भारी बमबारी की खबर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला से टेलीफोन पर बात की। बातचीत में पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और उसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री फिनलैंड के राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। श्री स्टब रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी हैं। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के कार्यकाल का अंत हो सकता है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि बातचीत जारी है और अंतिम निर्णय का इंतजार है। 2005 से बिहार की सत्ता संभाल रहे 75 वर्षीय नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर कयासों का दौर तेज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।